Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajatagiri Nibham चारुचंद्रवतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 ॐ ॐ ॐ कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद में छठे अध्याय के 21वां मंत्र तप प्रभावात् देव प्रसादात् च ब्रह्मा हस्वेत श्वेतोर श्वेतरो अथ विद्वान् अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रवाच सम्यक् ऋषि संग जुष्टम् वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम् ना प्रशान्ताय दातव्यम् ना पुत्राया शिष्याय वा पुनः यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैति कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ति महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः इति श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतिम चरण की व्याख्या है। ब्रह्म विद्या जो गुरु परंपरा से प्राप्त होती है उसकी महिमा का ये वर्णन कर रहे हैं। अन्य विद्याओं की कोई परंपरा नहीं है, जो भी जहां भी जैसे को भी उसका उपदेश किया जाता है उसकी अपनी परंपरा नहीं होती, लेकिन ब्रह्म विद्या की अपनी एक परंपरा है। सदाशिव समारंभान शंकराचार्य मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये ब्रह्म विद्या कोई बरसात ज्यादा हो गई तो बीच में से पानी का फ्लो हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो उस मूल से प्रवाहित हुई है जो बीच में सूखने का नाम नहीं है, और उस मूल का निरंतर जैसे गंगा जी जैसी है ब्रह्म विद्या। गोमुख से प्रवाहित हुई और गंगा सागर तक एक रूप में वह प्रवाहित होती रहती है। गंगा जी को फर्क नहीं पड़ने वाला बारिश होती है कि नहीं होगी। यदि बारिश ज्यादा हो गई, बीच बीच के नदियां यदि आ गई, जुड़ गई, उससे अलावा वो दूसरी चीज है, अन्यथा अपने प्रवाह उसका निरंतर रहता है। ब्रह्म विद्या अनादिकाल से, जैसे कि कल के मंत्रों में बताया था कि उस परमात्मा ने सबसे पहले प्रथम शरीर हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करके अपनी सारी वेद राशि उसको पैदा की, प्रदान किया, इसी तरह अनादि पुरुष परमात्मा के द्वारा प्रवाहित हुई हुई होने के कारण ये ब्रह्म विद्या अभी तक लुप्त नहीं हुई है। कभी कभी महात्मा लोग चिंता करते हैं, धीरे धीरे आश्रम की परंपरा, स्वाध्याय प्रवचन की परंपरा समाप्त होती जा रही है आधुनिकता के चलते, तो कहीं ये ब्रह्म विद्या लुप्त न हो जाए, महात्मा लोग इस चिंता करते हैं। लेकिन वास्तव में ब्रह्म विद्या इतनी कमजोर नहीं है कि ये लुप्त हो जावे। यदि लुप्त होना था तो कभी का लुप्त हो चुका होता। संसार में एक भी वेदांत के ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु जिंदा रहेगा तब तक ब्रह्म विद्या लुप्त नहीं होगी, फिर वहीं से इसका विस्तार होगा। ये अलग है कि इसके जिज्ञासुओं के कमी और अधिकता के चलते इसका थोड़ा विस्तार और विस्तार में कमी ये आ सकती है, लेकिन लुप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सत्य विद्या है, यथार्थ विद्या है। जिसने इस विद्या का प्रयोग किया है उसको ये अनुभव हुआ है और वो कृतकृत्य हुआ है इस विद्या के द्वारा। तो इस परंपरा को यहां बताया जा रहा है। श्वेताश्वतर मुनि ने इस विद्या को कैसे प्राप्त किया, एक तो ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की परंपरा विधि कैसी है, ये पहले वाक्य से बता रहे हैं। गुरु ने जिस विधि से इसको प्राप्त किया है, शिष्य भी उसी विधि से इसको ग्रहण करे। गुरु के लिए दूसरी विधि और शिष्य के लिए दूसरी विधि नहीं है, एक ही विधि है, क्योंकि उस शिष्य को फिर गुरु बनना है, इसीलिए उसने भी उसी विधि से प्राप्त करना है। ये ब्रह्म विद्या ऐसा नहीं है कि केवल गुरु के पास रहता हो, ये ब्रह्म विद्या गुरु से फिर शिष्य में जाएगा, शिष्य से फिर वो शिष्य गुरु बनेगा, फिर दूसरे शिष्य में जाएगा। इसीलिए प्रक्रिया ये की है, विद्या ये की है। तप प्रभावात् देव प्रसादाच्च, दो चीज को महत्व दिया है। ब्रह्म विद्या जीवन में फलीभूत होने के लिए, उतरने के लिए। ब्रह्म विद्या सुनने के लिए कोई शर्त नहीं है, वेदांत सुनने के लिए, ब्रह्म विद्या श्रवण करने के लिए तो कोई शर्त नहीं है। हालांकि शर्त रख दिया गया है, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ब्रह्म विद्या का श्रवण कर सकता है, लेकिन प्रेमपुरी आश्रम में कोई ऐसा कंडीशन रखा नहीं गया है। ये ओपन है सभी के लिए, जिसकी इच्छा हो आ जाए सुने। लेकिन वो श्रवण किए हुए विद्या जीवन में फलीभूत हो गए। फलीभूत होने का मतलब है कि वो जीवन में असर करे, प्रभाव दिखावे अपना। जैसे कोई दवाई आप सेवन करते हैं तो वह जीवन में फलीभूत होता है तो रोग शांत होता है, दवाई असर करती है तो तुरंत उसका पता चलता है कि हाँ दवाई असर कर रही है। अन्यथा दवाई सेवन करने पर भी रोग यथावत या और बढ़ते जा रहा है तो ये निश्चय है कि दवाई असर नहीं कर रही है। तो ब्रह्म विद्या का प्रभाव जीवन में कब दिखेगा? तो बोले जब ये दो चीज होंगे, तप प्रभावात देव प्रसादात। सबसे पहले तो तपस्या का प्रभाव जीवन में होना चाहिए। तपस्संयुक्त ब्रह्म विद्या जीवन में फलीभूत होती है, तपस्संयुक्त नहीं है तो ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होती है। इसीलिए तप प्रभावात, तप शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या को तपस्या से प्राप्त करना चाहिए, और जिसके जीवन में तपस्या होगी वही ब्रह्म विद्या को प्राप्त करेगा और वही ब्रह्म विद्या के द्वारा कृतकृत्यता का अनुभव कर पाएगा। वेदांत तो जो भी सुन सकता है, भोगी भी सुन सकता है, रागी भी सुन सकता है, सुनने में क्या अर्ज है? लेकिन उसका प्रयोग, उसका फल भोगी और रागियों को उसका फल नहीं होगा। तप प्रभावात, शंकराचार्य जी ने तप का एक सामान्य अर्थ कर दिया है, कृच्छत चांद्रायणादि लक्षणस्य तपस्य। जो कृच्छत चांद्रायण आदि जो तप हैं बताया गया है, ये तप तो प्रायश्चित्तात्मक तप है। तपस्या का प्रयोजन होता है कि जीवन की सारी विकारों को हटाया जाए। ब्रह्म विद्या तुम्हारी विकार को नहीं हटा सकती है, क्योंकि ब्रह्म विद्या का और किसी से विरोध नहीं है। ब्रह्म विद्या का केवल एक वस्तु से विरोध है, उसके अलावा और किसी से उसका विरोध नहीं है। वह है मूला विद्या, उसके साथ विरोध है ब्रह्म विद्या का, उसके अलावा और किसी के साथ विरोध नहीं है। तो जीवन में जितनी भी कमी है, जितनी भी कमजोरियां हैं, जितने भी विकार हैं, उन सारे के सारे कमी कमजोरी विकारों को तपस्या के माध्यम से शोधन करना पड़ता है। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, जैसे सुवर्णकार ज्वेलरी, सुवर्ण को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाता है तभी वह उसमें विद्यमान विकार हटते हैं। इसी तरह जीवन जब तप से तपता है तभी जीवन के विकार हटते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि तपस्या करने लगो तब वेदांत फलीभूत होगा। ठीक है, तपस्या के बिना फलीभूत नहीं होगा, लेकिन तपस्या के अनेक प्रकार हैं। कहीं पंचाग्नि ताप कर तपस्या करते हैं, कोई खड़े होकर, खड़े सूर्य होकर तपस्या करते हैं। कुंभ मेलाओं में आप जाओ तो बहुत से नागा सन्यासी हैं, 12 वर्ष से वो लोग बैठे ही नहीं है जमीन में, पलेथी मारकर खड़े ही रहते हैं, हमेशा खड़े ही रहेंगे, बैठने का तो नाम ही नहीं है। और आप समझोगे, आप सोचोगे कि कैसे संभव होगा, तो होता है 12 वर्ष तक खड़े हैं, बैठते नहीं है। ऐसे ऐसे सन्यासी देखे हैं कि 12 वर्ष हो गया, उनके हाथ ऊपर किया तो ऊपर ही है बस। ऐसा क्यों किया? बोले सूर्य को अर्पण कर दिया, हाथ नीचे आता ही नहीं। तो इन सब तपस्या के द्वारा ब्रह्म विद्या फलीभूत होने की योग्यता संपादन नहीं होती है। लेकिन यहां जिस तपस्या की बात यहां कह रहे हैं शंकराचार्य जी, स्वाध्याय तप उच्यते। स्वाध्याय एक तपस्या है,
और तपस्या के द्वारा ब्रह्मीभूत फलीभूत नहीं हो, ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होती है, स्वाध्याय रूपी तपस्या से ही ब्रह्म विद्या फलीभूत होती है। स्वाध्यायो तप उच्यते। लोग कहते हैं कि महाराज कब तक ये स्वाध्याय करते रहेंगे, कब तक वेदांत सुनते रहेंगे, वेदांत ने कहा कि आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। तुम्हें और करना क्या है? संसार से तुम छुटना चाहते हो तो संसार के लिए करना कुछ बाकी रहा नहीं, क्योंकि जिससे तुम छुटना चाहते हो उसके लिए करना तो कोई प्रयोजन रहा नहीं। तब फिर करना क्या है? नयेत वेदांत चिंतया आसुप्ते रामृते कालम। जब तक रात्रि की निद्रा नहीं आती है तब तक वेदांत चिंतन करो। कल एक सज्जन आए थे हमसे, पूछने लगे थे, महाराज वेदांत चिंतन करते करते स्वरूप स्थिति होती है फिर भी निद्रा नहीं आती है। कल एक सज्जन ने ये बात अपनी समस्या कही है, और ये बिल्कुल सही है। वेदांत चिंतन करते करते स्वरूप स्थिति हो जावे और निद्रा ना आवे, स्वरूप स्थिति हो जाए तो निद्रा आवे कि न आवे, निद्रा का क्या हिसाब करना है भाई? स्वरूप स्थिति हो जाए फिर निद्रा के हिसाब करना पड़ता है। अब यदि तुम्हें निद्रा की हिसाब करनी है, निद्रा आनी चाहिए, निद्रा की ही चिंता है, तो समझ लो कि स्वरूप स्थिति नहीं हुई है। स्वरूप स्थिति तो वो चीज है कि वहां की निद्रा आने की तो बात छोड़ दो, भूख नहीं लगी तो भी क्या नुकसान है? स्वरूप स्थिति हो गई तो निद्रा नहीं आती है तो क्या नुकसान है? नहीं आए नहीं आए। फिर कैसे निद्रा आए? तो ब्रह्म विचार निद्रा के लिए नहीं होता है, सारी आदि व्याधि उपाधि को नाश करने के लिए ब्रह्म विद्या है। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति से परे जाने की विद्या है ब्रह्म विद्या, स्वरूप स्थिति। अब फिर निद्रा नहीं आवे करके तुम चिंता करते हो, तो निद्रा ही तुम्हें चाहिए तो फिर जप करो, अजपा जप करो, क्योंकि मन की जो चंचलता है वो निद्रा में प्रतिबंधक होती है। मन में और बुद्धि में जो संसार के पदार्थों के विषयों के या घटना का या कोई भी प्रसंग दिमाग में जब घूमता है तब निद्रा का प्रवेश नहीं हो पाता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वृत्तियां बदलती रहती हैं, वृत्तियां बदलती रहती हैं, और ये बदलती हुई वृत्तियां ही निद्रा के लिए रुकावट है। और क्योंकि अजपा जप ऐसी जप है वो वृत्तियों को बदलने नहीं देगी, एक ही रूप में वह निरंतर चलता रहेगा। अभ्यास करो तो देखो, वृत्ति जब एक विषय को होती है तो निद्रा अपने आप ही आ जाती है। बैठो, खा पिया और बिस्तर में चले जाओ, मन से जप करो, शिवोम शिवोम हरिओम हरिओम, मन से खाली उसी, उसके अलावा दूसरा नहीं। शिवोम शिवोम हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय ओम नमः, कोई भी मंत्र ले लो आलम्बन, सोहम सोहम कर लो और कुछ नहीं, तो सोहम हम सब कर लो, मन ही मन, क्योंकि मन उसमें जब लग जाता है तो धीरे धीरे मन श्रांत होता, कहता है कि कब तक इसको रटे रहेंगे, चल सो जाओ, तो अपने अपने निद्रा आ जाती है। तो ब्रह्म विद्या निद्रा के लिए नहीं है, ब्रह्म विद्या भोग के लिए नहीं है। तुम कहो कि महाराज भूख नहीं लग रही है, ब्रह्म चिंतन करते करते स्वरूप स्थिति हो जाती है लेकिन भूख नहीं लगती, अरे भूख से क्या संबंध है? उसके लिए फिर दवाई खाओ। तुम ये चाहते हो कि ब्रह्म विद्या हर व्यवहारिक समस्या का समाधान करे, ब्रह्म विद्या तो पूरे तुम्हारी व्यावहारिक सत्ता का नाश करने वाली ब्रह्म विद्या है, तो वो क्या समाधान करेगी? तो लौकिक व्यवहार का समाधान ब्रह्म विद्या नहीं करती है, समाधान इस अर्थ में है कि संसार के बारे में तुम्हें ज्यादा चिंता सता रही हो तो ब्रह्म विद्या इतनी कह देगी कि भाई इसके बारे में तुम विचार करने छोड़ दो, क्योंकि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। बस इसके अलावा ब्रह्म विद्या का और कोई समाधान नहीं है। तप प्रभाव, तपस्या का अर्थ होता है स्वाध्याय तप उच्यते। परंपरागत ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय, ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय भी स्वमुख नहीं है, परंपरागत, अन्यथा तुम किसी अर्थ का कोई और अर्थ लगा दोगे। और तपस्या का दूसरा अर्थ किया है मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तपम्। मन के और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, एक रूपता है, उसी को परम तप कहा। अब हमारी अवस्था तो यह है कि इंद्रियों की दूसरी प्रवृत्ति है, मन की दूसरी है। हम यहां बैठे हैं कान से शब्द सुनने के लिए, लेकिन मन कुछ और चिंतन करने लग जाता है तो फिर यह तप नहीं बनता। कान से शब्द सुनने के लिए हम बैठे हैं, आंख से रूप देखने के लिए बैठे हैं, जिस समय कान से शब्द सुनने के लिए बैठे हैं तो उस समय मन का संबंध उस कान से होना ही चाहिए। यह नहीं कि कान से शब्द सुनने के लिए सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं और मन किसी और तरफ चला जाता है तो यह फिर तपस्या नहीं हुआ, इसलिए श्रवण फलीभूत नहीं होता। मंदिर में रूप, आंख से रूप भगवान के विग्रहों को दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं, रूप देखने के लिए खड़े होते हैं तो उस समय मन किसी और की तरफ चला जाता है, तब फिर वह मन की और इंद्रियों की एक रूपता नहीं हुई, इसलिए वह तप नहीं बनेगा। तब भगवत दर्शन फलीभूत नहीं होगा, सत्संग श्रवण फलीभूत नहीं होगा। मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं तप उच्यते। ये तप जब जीवन में दृढ़ होता है तभी जाकर ब्रह्म विद्या जीवन में फलीभूत होता है। श्वेताश्वत ऋषि ने ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, किस तरह प्राप्त किया, बोले तप प्रभावात। हमारी तो आदत ऐसी हो गई कि शरीर संबंधी थोड़ा भी कष्ट सहन करना नहीं चाहते। अब जब शरीर संबंधी ही कष्ट सहन नहीं कर सकते हैं तो मन संबंधी कष्ट कैसे सहन होगा। तप प्रभावात देव प्रसादात च। दूसरा, खाली तपस्या लगे और परमात्मा की उपासना न करे तो भी वह कोरी तपस्या ब्रह्म विद्या को जीवन में फलीभूत होने नहीं देता है। देव प्रसादाच, यहां देव शब्द का अर्थ ईश्वर प्रसाद, ईश्वर कृपा, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महावय परित्राण द्वित्राणाम उपजायते। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं ईश्वर की कृपा होती है तभी, पुंसा माने जीवात्माओं के हृदय में अद्वैत वेदांत के प्रति रुचि जगती है। तो वेदांत के लिए ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, तपस्या और ईश्वर उपासना ये दोनों साथ साथ होनी चाहिए। जड़ तपस्या, कोरी तपस्या ब्रह्म विद्या को हृदय में उतरने नहीं देती। ईश्वर उपासना मूलक तपस्या वही ब्रह्म विद्या को हृदय में उतरने में सहयोग है, मददगार है। शंकराचार्य जी ने अपरोक्षानुभूति में लिख दिया है सोवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, दोनों चीज को रख दिया है। सुवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा साधनम प्रभवेत पुंसा वैराग्यादि चतुष्टयम्। शंकराचार्य जी तो ये कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के योग्यता के लिए भी तपस्या और ईश्वर कृपा होगी तभी तुम ब्रह्म विद्या के श्रवण के अधिकारी बनोगे। एक किसी संयुक्त परिवार में है और सास और बहू से मिला नहीं, सास बहू से झगड़ा करती है, बहू सास से झगड़ा करती है, बाप बेटे से झगड़ा करता है, बेटा बाप से झगड़ा करता है। सामान्य लौकिक प्रसंगों को लेकर तुम इतने विवाद करते हो, उसके बाद बाप से झगड़ा होते हुए बेटा सत्संग में आता है ब्रह्म विद्या सुनने, और बेटे से झगड़ा करते हुए बाप आता है सत्संग में ब्रह्म विद्या सुनने, सास से झगड़ा करते हुए बहू आती है ब्रह्म विद्या श्रवण करने में, बहू से झगड़ा करते हुए सास आती है ब्रह्म विद्या सुनने। अरे एक तुम्हारा एक गृहस्थ आश्रम का मर्यादा है, गृहस्थ आश्रम का धर्म है, उसी में ही तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, सहन नहीं कर पा रहे हो, तितिक्षा का अभाव है। तुम एक अपनी ही सास के शब्द नहीं सुन पा रहे हो तो दुनिया तो इतनी कीचड़ उछालने के लिए तैयार है, फिर लोगों का जो है शब्द तुम कैसे सहन करोगे? तुम अपने ही पिता के शब्द सहन नहीं कर पाओगे तो दुनिया को बकवास करने के लिए, तुम्हारे कीचड़ उछल लांछन लगाने के लिए हजार मुख तैयार हैं, फिर उनको कैसे सहन करोगे? जिसने पैदा किया, जिसने पाला पोषण किया, उसके ही तुम एक शब्द सहन नहीं कर पाते हो तो दुनिया से तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। वो तो बोलने के लिए तैयार है, मौका खोज रहे हैं चींटी को पहाड़ बनाने के लिए, तुम्हारी जो है राई बराबर के कमी कमजोरियों को पहाड़ बनाकर तुम्हारे सामने रखने के लिए तैयार हैं, फिर उस समय तुम कैसे सहन कर लोगे? बोले दूसरे की बात तो सहन कर लेंगे। अब दूसरे का सहन कर रहे तो अपने बाप का क्यों नहीं सहन करता है? नहीं, दूसरा जो कह दे तो वो तो सहन कर लेंगे महाराज, अपनी सास का। अरे दूसरे का कहना सहन, तू अपनी सास का क्यों नहीं सहन कर रही? जिस पति को तू अपना पति सर्वस्व मान रही है, उसको जिसने 10 महीने तक गर्भ में धारण करके 10 वर्ष तक मलमूत्र की सेवा करके आज इस योग्य को बना दिया, उसकी बात तू सहन नहीं कर रही है? शंकराचार्य जी लौकिक व्यवहार को तिरस्कार करके माने विवादास्पद करके तुम ब्रह्म विद्या में भी सफल नहीं हो सकते। सुवर्णाश्रम धर्मेण उसको शास्त्र विधि से, मर्यादा विधि से, लौकिक विधि से उसको ठीक से निर्वहन करोगे तो वह तुम्हारा तप है, और उसका निर्वहन नहीं करोगे तो फिर वह तुम्हारा तप नहीं है। और उस तप के अभाव से जितना भी सुन लो वेदांत फलीभूत नहीं होगा। ये दो चीज बहुत जरूरी है, तप प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्मः श्वेताश्वतरो अथ विद्वान। उपनिषद ने खुद कह दिया, ये श्वेताश्वतर ऋषि नहीं कह रहे, ये वाक्य श्वेताश्वतर ऋषि की योग्यता के बारे में खुद उपनिषद व्याख्या कर रही है। श्वेताश्वतर ऋषि ने इस ब्रह्म विद्या को, श्वेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेदीय इस शाखा के इन सारे विद्या को उन्होंने कैसे प्राप्त किया? बोले तप प्रभावात् देवता प्रसादात् च ब्रह्मः श्वेताश्वतरो अथ विद्वान। श्वेताश्वतर ऋषि ने जाना, उस ब्रह्म को जाना। और ये नहीं कह रहे हैं कि श्वेताश्वतर ऋषि ने तो इन दो साधनों के माध्यम से जाना और तुम उसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने जान लिया। ये कहने का अभिप्राय है कि जिस विधि से श्वेताश्वतर ऋषि ने ब्रह्म विद्या को जाना, तुम भी उसी विधि से जान सकते हो।